श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ चतुर्थ स्कंद 26वां अध्याय श्लोक संख्या 15। न तथेतर्हि रोचन्ते गृहेषु गृहसंपदः यदि न स्याद् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता व्यंगे रथैव प्राज्ञः को नामासीत् दीनवत् न तथेतार्हि रोचन्ते गृहेषु गृहसंपदः यदि न स्याद् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता व्यंगे रथैव प्राज्ञः को नामासीत् दीनवत्। पूर्ववत नहीं, एतर्हि इस समय, रोचन्ते अच्छे लगते हैं, गृहेषु घर में, गृह संपदः घरेलू साध समन, यदि न स्यात् अगर ना हो तो, गृहे घर में माता माँ पत्नी भार्या बा अथवा पति पति देवता पति परायण पत्नी व्यंगे अंगहीन रथ व्यंगरथ अंगहीन रथ इव सदृश प्राज्ञा विद्वान मनुष्य क ऐसा कौन है नाम निसंदेह आसित बैठेगा दीनवत दीन के समान। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। राजा पुरंजन ने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे घर का सारा साज समान पहले की भांति मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता। मैं सोचता हूं कि यदि घर में माता अथवा पति परायण पत्नी न हो तो घर पहियों से विहीन रथ की तरह प्रतीत होता है। ऐसा कौन मूर्ख है जो ऐसे व्यर्थ के रथ पर बैठेगा। तात्पर्य, परम राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित ने कहा है, माता जस्य गृहे नास्ति भार्या च अप्रियवादिनी अरण्ये तेन गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम। यदि किसी के घर पर अपनी माता तथा प्रियवादिनी पत्नी न हो तो उसे घर छोड़कर जंगल चले जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए जंगल तथा घर में कोई अंतर नहीं होता। वास्तविक माता भगवत भक्ति है और असली पत्नी वह है जो भक्ति के कार्यों में अपने पति को सहायता करती है। सुखी घर के लिए ये दोनों बातें आवश्यक हैं। वास्तव में स्त्री को पुरुष की शक्ति माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रत्येक महापुरुष के पीछे या तो माँ रही है या उसकी पत्नी। यदि घर में अच्छी पत्नी तथा माँ हो तो गृहस्थ जीवन सुखी रहता है। ऐसी दशा में गृहस्थी के सारे कार्य तथा घर का सारा साज सामान मन को भाता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को अच्छी माता तथा प्रियवादिनी पत्नी दोनों प्राप्त थी और वे अपने घर में अत्यंत सुखी थे। फिर भी सारी मानवता के लाभ के लिए उन्होंने संन्यास ले लिया और अपनी माता तथा पत्नी दोनों को त्याग दिया। दूसरे शब्दों में, घर पर सुखी रहने के लिए आवश्यक है कि माँ तथा पत्नी दोनों रहे, अन्यथा गृहस्थ जीवन कोई अर्थ नहीं रखता। जब तक मनुष्य धर्म के क्षेत्र में बुद्धि द्वारा पथ प्रदर्शन प्राप्त नहीं करता और भगवान की भक्ति नहीं करता, तब तक उसका घर संत पुरुषों को प्रिय नहीं होता। दूसरे शब्द में, यदि किसी की अच्छी माँ तथा अच्छी पत्नी हो तो जब तक नित्यांत आवश्यक न हो संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हुआ। ओम अज्ञानं तिमिरंधस्य ज्ञानां जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितंश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ये नारद और प्राचीन बरही का जो ये संवाद पुरंजन उपाख्यान बड़े तात्विक है। ऐसे तो कहानी के छल में नारद जी प्राचीन बरही राजा को उपदेश कर रहे हैं, ये एक कहानी है, उसके पीछे पूरे आत्म तत्व प्रत्येक बद्ध जीव का आपने मुक्त होने की प्रक्रिया और उनके बद्धता सब कुछ वर्णन है। विशेष करके ये जो श्लोक 14-15 नंबर श्लोक में ये दिखाया गया, ये पूरी 26 अध्याय में ये दिखाया गया कि कैसे आप पढ़े होंगे अब तक कि महाराज पुरंजन शिकार करने के लिए निकल पड़े, उनका मन में बड़ा इच्छा हुआ आखट करने के लिए, तो पत्नी के बिना बताए वो अपने बढ़िया सोने की रात अपने अक्षतृणीर अपने धनुष ये सब ले करके वो चल पड़े। ये जो सब रथ है वो रथ तो हमारा शरीर है, ये जो अक्षतृणीर है अनंत कामना है हमारी इच्छाएं हैं, और ये स्वर्ण रथ है वो कुछ नहीं महारजोगुण पैशन है। और इस प्रकार और जो धनुष से भोग इच्छा है और कर्तृत्व भाव भोक्तृत्व भाव यही है, इस भाव से पढ़ करके कभी कभी धर्म परायण बुद्धिमान व्यक्ति भी ज्ञानी व्यक्ति भी तमगुण के द्वारा प्रभावित हो करके गलत काम कर बैठता है, कर लेता है, अपने विवेक को रिजेक्ट कर देता है, अपने सद्बुद्धि को रिजेक्ट करके फंस जाता है, प्रलोभन में आकर के पाप कर्म कर डालता है। और जब तक करता थोड़ा अच्छा तो लगता है, लेकिन बहुत जल्दी फिर उसको याद करते अरे मैं क्या कर रहा हूं, फिर हाय हाय कर रहा है, बहुत पश्चाताप हो रहा है। ये 14 नंबर श्लोक में जो पूछे पुरंजन ने अंतपुर के स्त्रियों को, वही बात पश्चाताप कर रहे हैं कि हाय हाय मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैंने ऐसा ना किया होता आज मेरा क्या स्थिति होता। बहुत अनुतप्त होते हैं, अनुतप्त होकर के अगर पूछा जाए क्यों अनुतप्त हो रहे, भोगो ना, सारे भोगने के लिए आपके पास इंद्रिय है, विषय भोग खूब मजा में रहो ना। अरे यही विषय मुझे जो पहले अच्छा लग रहा था अब रोच नहीं लगता, रोचक नहीं लगता, अब सुहावना नहीं लगता, मैं भी हूं मेरा इंद्रिय है वो विषय भी है लेकिन ये भोगने की इच्छा ही नहीं है, यही इसमें प्रकट कर रहे क्यों अच्छा नहीं लगता। जैसे उदाहरण देते हैं एक रथ हो, रथ का अंग घट गया हो, चक्का ना हो, घोड़े ना हो, एक गाड़ी हो बढ़िया उसमें पहिया ना हो, स्टेरिंग ना हो, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास गाड़ी आपके काम का है। तो ऐसा व्यंग रथ है जो रथ में चक्का भी ना हो और घोड़े भी ना हो, इस रथ में बैठे बैठे क्या करेगा, रथ चलने वाला है नहीं, कौन ऐसा मूर्ख होगा दीन व्यक्ति होगा इस रथ में बैठेगा। और उसको नारद जी ने इस प्रकार के उदाहरण दिए हैं, एक तो व्यंग रथ दिए हैं और व्यंग रथ को क्या दिए हैं, ये उसके साथ तुलना करके जैसे जस्य नास्ति गृह माता, माता जस्य गृह नास्ति, जिनके घर में ये दो चीज देते हैं, बोलते जिनके घर में ये दो ना हो तो घर भी जैसा व्यंग रथ के समान, शकाहीन और घोड़ाहीन रथ के समान। कैसे घर में? बोले कोई भी सुखी संसार, सुखी घर में, सुखी परिवार में ये दोनों नित्यांत आवश्यक है। क्या? एक स्नेहमयी मां और दूसरा पति परायणा, पतिव्रता पत्नी। ये पत्नी केवल नहीं कहा गया, पति देवता, पति जिसका देवता तुल्य हो ऐसे पत्नी, ऐसे नहीं कहा गया। इस प्रकार के पत्नी जब ना, पत्नी और मां जब ना हो तो घर ही नहीं है। चाणक्य पंडित कहते तो जंगल चला जाना सही है। माता जस्य गृह नास्ति भार्या च अप्रियवादिनी, अप्रियवादिनी मतलब आप बात कहे तुरंत मुख में जवाब दे दे, उलट कर बात कहे तो समझो बुरी भाग्य है। आपको देवता क्या मानेगा, नौकरी नहीं मानता। यहां पति देवता कहा गया, यहां तक पति नौकर नहीं, तो बोलते हैं कि अरण्य चला जाना चाहिए। ठीक ऐसे स्थिति आप लोग अनेक गृहस्थ हैं तो अनुभव कर सकते हैं। अगर घर में आपको पोषण देने वाला, आपको प्रेम करने वाला, आपको ममता देने वाला मां घर में ना हो, अगर घर में हो तो आपके पत्नी और बच्चे के चंगुल में आकर उनको पूछे ना, उसको ओल्ड एज होम में डाल दो, ऐसी स्थिति है। और उन्हीं के चक्कर में आ जाओ जो हमेशा उसको ट्यूशन कराते हैं, बात बोलो तो क्यों जवाब देंगे, अप्रिय बाहरी आच अप्रिय बाद। बोले इसी स्थिति में तो जितने जल्दी हो घर त्याग कर जंगल भाग जाओ, क्योंकि जथा गृहम तथा अरण्य, घर और अरण्य में फर्क नहीं पड़ा, ऐसी स्थिति है। ठीक इसी स्थिति को पुरंजन के साथ नारद जी ने सिखाते हैं कि उन्होंने जब मृगया करने गया तो पत्नी से कंसल्ट नहीं किए थे, चले गए, आपने रजोगुण के प्रभाव से आकर के चले गए। इस प्रकार रजो के प्रभाव से आकर के आदमी पाप कर्म करता है और पश्चाताप करता है। भगवान ने भगवद गीता में तीसरे अध्याय में कहते हैं, अर्जुन जब पूछा उन भगवान को, अथ केन प्रयुक्तोयं पाप चरति पुरुषः अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलात् विनियोजित। हे भगवान, हे वार्ष्णेय, पुरुष न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता मैं पाप कर्म करूं, सभी चाहते मैं अच्छा बनूं, अच्छा कर्म करूं, कौन नहीं चाहता है, सभी चाहते, लेकिन न चाहते हुए जैसे उनके द्वारा जबरदस्त ये गलत काम कराया जाता है, क्यों? भगवान बोले बात सही, क्या बिल्कुल सही, कोई नहीं चाहता बुरा बनना, लेकिन बुरा बनना ही पड़ता है, कभी कोई झूठ बोलना पड़ता है, कभी कोई लोभ में आकर कोई पाप कर्म भी करना पड़ता है। बोले क्यों न चाहते हुए? बोले इसके कारण आप नहीं है, आपके नहीं है, इसका कारण है जो तीन गुण के अंदर रजोगुण है ना, मिस्टर लस्ट पैशन, काम ऐसा क्रोधो ऐसा रजोगुण समुद्भव। ये जो काम है वो काम क्रोध में परिणत होता है, वो आते कहां से ये काम को? बोले रजोगुण से उत्पन्न होते, उद्भव रजोगुण, रजोगुण से उत्पन्न वो लस्ट एंड रात, और काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ओ महाशत्रु उसको जानो, पूरे जिंदगी में पूरे दुनिया में अगर आपका कोई महाशत्रु हो, कोई नहीं यही है काम, विधि है ना यह वैरिणम, इसी को जानो, वही आपके वैरी है। केवल वैरी नहीं है, शत्रु तो भाई दूर में कहीं रहेगा, कभी कोई लड़ाई करेगा, गाली देगा, कुछ करेगा आपको फंसाने के लिए चक, लेकिन ये काम ऐसा है, बोलते हैं वो सारा कुछ खा जाएगा, ऑल डेवरिंग। महा असन, असन मतलब खाना भोजन, वो सब कुछ खाने वाला है, जो कुछ डालेगा खा लेगा। काम ऐसे महाराक्षस है, पूरे दुनिया के वस्तु दे दो काम की तृप्ति नहीं हो सकता, पूरा डाल दो, जहां तक आप दृष्टि जाए ये सारे संपत्ति धन दौलत ऐश्वर्य सारे काम को बुझाने के लिए डाल दो, काम कभी नहीं बुझने वाला है। इसलिए महाअसन सब कुछ खाने वाला है, जो डालेगा उसको खा जाएगा, जो डालेगा उसको खा जाएगा, लेकिन तृप्त नहीं होगा, फिर भी अतृप्त रहेगा, और अतृप्त रहने से वह काम तृप्ति करने में तो प्रेरित करेगा, आप लग जाएंगे तृप्ति करने में, कभी तृप्त हो गया नहीं, अतृप्त नहीं होगा तो वो काम नीचे चल करके क्रोध से परिणत होगा, डिग्रेड होगा। काम का पतन होते ही कामानुज, काम के छोटे भाई एक क्रोध, उसको क्रोध कामानुज कहते हैं। तो इसी स्थिति में काम जब विषय होंगे लिप्त होता है, लिप्त होते कर नीचे ना गिरे क्रोध, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात तब तो फिर सारे काम आ जाएगा एक से एक नीचे फंसने का। इसी समय में विषय भोग से फंसने से पहले अगर अपना बुद्धि सद्बुद्धि सद्विवेक को धर्म परायण बुद्धि को उपयोग करके इससे बच जाओ, बस यही एक काम है, तब फिर क्रोध आदि कुछ नहीं होगा, फिर नीचे डिग्रेडेशन नहीं होगा, उस रजोगुण से सतोगुण को उठना है, यही प्रक्रिया करना है। अगर वो नहीं किया तो अंत में पश्चाताप और पश्चाताप। हम सभी रज के प्रभाव से आकर के हम अपने आप को भोक्ता और कर्ता माने हैं, सही में ना तो हम कर्ता है ना तो भोक्ता है, हम कुछ है नहीं, हम तो भगवान के दास दासानुदास हैं, यही हमारा सचमुच सच्चाई स्वरूप है। लेकिन भगवान के अंश तो है ना, इनके कारण के कारण हमारा अंदर भी भोगपना और कर्तापना थोड़ा बहुत आया, और इतने तक आया बोले हम भी कुछ बनना चाहिए। ये रजोगुण आपको इतने प्रेरित करेगा, इतने तक प्रेरित करता है, इस दुखपूर्ण दुनिया में जेल में सड़ते हुए आदमी अपने आप को भगवान तक घोषणा कर लेता है, ये तो कोई लिमिट है, हद हो जाता है। अरे हाँ, तो ये जो भोग वासना ये केवल श्री रजोगुण को द्वारा प्रेरित होता है, तो इसी समय हमको समझना चाहिए। तो आज नारद जी ने पुरंजन को समझाते हैं, हे राजा पुरंजन ने आपने जो यहां भारिया उनको बताया गया था, वो धर्म परायण बुद्धि, उस धार्मिक बुद्धि को सद्बुद्धि को विवेक को कंसल्ट नहीं किया, बोला अरे ठीक है चलेगा। अगर आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं, पाप काम करने जा रहे हैं, निश्चित अंदर से एक आवाज तो उठता है, आप सभी उसको महसूस करते होंगे, नहीं गलत है, नहीं करते तो क्या थोड़ा बहुत परेशान होगा, मत करो। लेकिन तुरंत फिर आपका मन कहता अरे यार चल दुनिया कितने है, छोड़ो यार चलो, ये ही रजोगुण। मन तो सेनापति है, इंद्रियों के सेनापति है, तो और रजोगुण स्वर्णमय रथ से बैठ करके सेनापति अपने आप को मानता है, तो तुरंत मन की सहायता लेकर के रजोगुण के प्रभाव से आप अपना जो सद्विचार सद्बुद्धि विवेक उसको अमान्य करते हैं, उसको कदर नहीं करते हैं, तुरंत पाप कर्म निवृत्त होने के लिए चले जाते हैं और गलत काम करने के लिए चले बढ़ते हैं, और आनंद भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता। वो जो क्षणिक सुख वो क्षणिक आनंद के चक्कर में फंस करके और हम कर डालते हैं, वो क्षणिक है, उसको धर्म माने ग्रंथ में ये सुख को, ये संसार के सुख को सफल सुख कहा गया। क्या कहा गया? सफल सुख। सफल मतलब चंचल, सफला एक नाम है जो बारिश के समय आकाश में जो विद्युत दिखाई पड़ता ना आग शब्द के साथ, तो उसको चपला कहते हैं। चपला कहती आया देखा तो एक सेकंड में चला गया, बस एक सेकंड में बड़े सोने की जैसे चकचक लाइट दिखाया, लाइट भी दिखा दिया और तुरंत अंतर्ध्यान हो गया। ठीक इसी प्रकार ये संसार की सुख है, आया और दिखाई पड़ा, थोड़ा आनंद हुआ कि आनंद तो कोई पूर्ति ही नहीं हुआ, आ हुआ न द नहीं हुआ फिर चला गया, अरे पूरा नहीं हुआ और दो अक्षर बाकी रह गया, फिर थोड़ा कोशिश करो, फिर कोशिश करो, फिर लगे काम करे सड़े रगड़े रगड़े, फिर थोड़ा आया, फिर वही आ में निकल गया, अरे यार अब तो हो जाएगा, अब तो कर डालूंगा, बस अब हो जाएगा। जैसे रेगिस्तान के मृग मरीचिका के पीछे प्यासी व्यक्ति भागता रहता है, प्यास लगता है और रेगिस्तान में फंस गया, कोई दिशा नहीं दिखता कि इधर जाऊं पूर्व कहां पश्चिम कहां उत्तर कहां दक्षिण कहां कहां जाऊं पता नहीं चलता, दौड़ता है किधर जाऊं जहां भी दौड़ता है, लेकिन दौड़ते दौड़ते श्रांति क्लांति में प्यासी हो गया, बहुत प्यास लगता, खाना ना मिले तो पानी तो मिल जाए, जल ही जीवन है, मर जाएगा पानी थोड़ा चाहिए, पानी तो ये बिल्कुल सूखे रेती है, लेकिन ये सूर्य किरण में दूर से बिल्कुल ब्लूइश वाटर झरना जैसा पानी दिखाई पड़ता है, उसको देख करके
वाह पी जाऊं ना लूं उसमें, अब तब कूद जाऊं उसमें, और उसके पास जाने के लिए दौड़ेंगे। जितने तेजी से दौड़ते जाएंगे इतने तेजी से दूर भागते जाएगा, कभी पकड़ में नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार इस संसार सुख को जितने तेजी से जितने प्रयास से जितने चेष्टा करेंगे इतने गति से भाग जाएगा, कभी अरे ना आता तो हाथ कोई बात होता, हम हताश भी नहीं करने देगा, छलक देखा चप्पल, हाँ हुई हूँ आओ। ये जो चप्पल सुख का मतलब है उसका थोड़ा चांचल्य दिखाएगा, चमक दमक दिखाएगा, और उसी के चमक दमक फंस जाएंगे। वही चमक दमक दिखा करके चले जाना सुख तो चंचल सुख है, कुछ नहीं है, बस इतने है। और इसी थोड़ी बहुत में आशा कर लेते हैं। अक्षय तृणीर पुरंजन महाराज जो बाण उठाए रथ में बैठ करके बोलते अक्षय तृणीर लिया, बहुत सारा सर लिया, बहुत सारे जो अशेष कामना हृदय माझे मुरत। तो ये जो अशेष कामना है अक्षय तृणीर है, एक से एक कामना पूरी किया, उसके साथ ये होना चाहिए ये होना चाहिए, वो जितने पूर्ति करेंगे इतनी बढ़ती चला जाएगा, जितने तेजी से कामना को इतने तेजी से वो कामना बढ़ते जाएगा, कभी घटेगा नहीं, ना घटेगा ना मिटेगा, ये स्थिति है। और उसको हम देखते नहीं, और आपने सदविचार सदबुद्धि विवेक को साइड करके उस रज के प्रभाव से असद बुद्धि के भोग वृत्ति जो इंद्रियां हैं प्रवृत्ति है भोग प्रवृत्ति का सहायता लेकर के जो सद प्रवृत्ति को हम रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट करके उसमें फंस जाते हैं, बस तो पाप में आ जाता है। वही काम के प्रभाव से आकर के ना चाहते हुए मनुष्य पाप करता है। प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य में इस श्लोक के आगे वाला तात्पर्य में जो काम है सुक्रोध हुए समय उसके पहले लाइन में लिखते हैं भगवद गीता में कि वास्तव में प्रत्येक जीव प्रत्येक मनुष्य मूलतः भगवान अंश है, भगवान के साथ संबंध तो है ही, और भगवान के साथ हमने जो प्रेममय संबंध था जो लाभ था अभी उसी को हम पोषण करना था पुष्टि करना था, लेकिन हम संसार का नजर जिस क्षण डाले उसी क्षण किया हुआ लाभ लष्ट में परिणत हो गया, वो जो प्रेम था वो काम में परिणत हो गया। इसके नजर संसार की संग करते ही तुरंत हमारा अंदर जो प्रेम भाव था वो काम भाव से परिणत हो गया। प्रभुपाद बढ़िया उदाहरण देते हैं, बोले कैसे, बोले जैसे दूध, बढ़िया दूध बैल करके रखा है, थोड़ा सा जामन डाल दो एक आध बिंदु तो क्या होगा, वो हो गया दही। और दही कुछ नहीं, दूध ही तो है, लेकिन फिर दही तो दही है, यही है, थोड़ा सा संग मात्र से दूध जैसे दही में परिणत हो जाता है, जैसे वो तमगुण भी आ जाता है, वो तमगुण है खट्टा, वो तमगुण हो जाता है तुरंत संग करते ही, सतगुण था रजोगुण के प्रभाव में आकर के थोड़ा सा संग किया, संग प्रभाव से तुरंत तमगुण से परिणत हो दूध दही में हो गया। ठीक इसी प्रकार जो हमारा अंदर असलियत भगवत प्रेम था ये संसार के संग करते ही तुरंत ओ काम में परिणत हो गया, और एक बार कामना जग गया तो नचा कर छोड़ेगा, अरे कितने जन्म जन्म एक बार नचा कर क्रांत हो जाए, क्रांति होने से फिर लाभ देता है, अरे अभी नहीं अब मिलेगा मेडल, अब तो फर्स्ट क्लास फास्ट होने वाले, क्यों पीछे उठ जल चलो आगे, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़े ले जाता है, ऐसे बढ़ते चला जाता है। तो हमारा बुद्धि हमारे पास है, समझदारी है, विवेक है, उस सद्बुद्धि विवेक को पतिव्रता पत्नी के नाम दिया गया, और जो भगवत उपासना भगवत सेवा भाव वो मां कहा गया, यहां जो मां और पत्नी दोनों की उपमा दिया गया है उसके असली अर्थ है मां जो है भगवान की प्रेममयी सेवा, वो है मां जननी, और जो उस भक्ति में प्रेम भगवत सेवा में आपको सहायता करने वाले वही बुद्धि देना धर्म परायणा विवेकवती जो बुद्धि है वो है आपके पति व्रता पत्नी। ये दोनों जब तक नहीं होंगे आपका उद्धार सुख तो असंभव ही संभव हो नहीं सकता। इसी को एक भौतिक उदाहरण देकर संसार के उदाहरण देकर कहते हैं, किसी के घर में अगर ऐसी मां ना हो और ऐसी पतिव्रता पत्नी ना हो तो कैसे घर में संसार में सुखी हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। मैं कुछ दिन पहले गया था, एक हमारा मित्र थे जो एक एडवोकेट है, ऐसे मेरे से बातचीत करते करते बोले स्वामी जी आजकल तो पूरे भारतवर्ष में क्या पूरा विश्व में सबसे ज्यादा केस मैट्रिमोनियल केस है, मतलब वो डिवोर्स केस है सबसे ज्यादा। हम कहां से कहां तक दौड़ना भागना पड़ता है, लोग जितने तेजी से शादी करते हैं इतने तेजी से त्याग भी देते हैं और इतने तेजी से केस भी करते हैं। भाई छोड़ दो आप दूसरे किसी पकड़ो शांति में रहो, नहीं नहीं, नहीं। बदला लेंगे, ये काम गुण रजोगुण का और एक प्रभाव है, वो शांत नहीं होगा, अशांत है। राज और रागात्मकम, राग में लगाया और बदला लेने के लिए और भोग करने हरी सदुपाय से, तो इतने केस बढ़ते जा रहा है। पहले तो हमारे भारतवर्ष में जो शब्दकोश है अभिधान में ये शब्द ही नहीं था डिवोर्स, हिंदी में आजकल तलाक, प्रभु जी बोलेंगे तलाक शब्द उर्दू शब्द है, ये हमारा संस्कृत या संस्कृत शब्द तो वैसे है कि हिंदी शब्द में है ही नहीं, इसको जोड़ जाड़ के विवाह विच्छेद किए, व्हाट इज दिस, ये है नहीं, बना हुआ शब्द है, क्योंकि हमारा शब्दकोश में था नहीं, क्योंकि हमारा भारत सनातन धर्म, सनातन भारत वर्ष में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, विवाह धर्म के साखी रखकर विवाह करने के बाद फिर इस प्रकार तलाक, हाउ कैन इट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है, ये किसका मन में विचार में ध्यान में कर्म में था ही नहीं। लेकिन हम लोग सो आधुनिक हो गए, आधुनिक सभ्यता को अपनाए, ये अपना करके ये हमारे आधुनिकता ही चीज और एडवांसमेंट है, दो महीना में छोड़ दो, चलो केस करेंगे, दिस इज आवर एडवांसमेंट, उसके हम गर्व करते हैं, वो सारे कोर्ट कचहरी इसी पलते हैं। तो इस प्रकार से अगर किसी को प्रभुपाद जी ने बताते हैं तात्पर्य में, प्रत्येक स्त्री पुरुष का एक शक्ति है, अगर शक्ति हो और शक्तिमान न हो तो उसका स्थिति क्या है, केवल शक्ति का एनर्जी का कोई स्थिति है, बिना एनर्जेटिक टिकेगा कैसे, उसका आधार क्या है, नहीं। तो इसलिए कभी कभी अगर ये मन में विचार आता है तो हम तो अकेली काम कर लेंगे, ओ यार व्हाट, हमारे क्या कमी है, हम भी आपके तरह है, ऐसे ये विचार ही मूलतः ठीक नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म के विरोध कर रहा है, नहीं। अर्जुन ने भगवत गीता में प्रथम अध्याय में विचार उठाए थे भगवान के सामने, जो युद्ध न करने का कई कारण था, इसमें एक कारण ये था, प्रतिसंधि कुल स्त्री, ये लड़ाई में कोई लेडीज तो नहीं आए, आजकल तो पुलिस में आर्मी में भी लेडीज चले गए, लेकिन तभी द्वापरांत तक अर्जुन आदि युद्ध कर महावर युद्ध तक कोई लेडीज आर्मी में नहीं जाते थे, वो घर में रहने वाले क्यों जाएंगे, तो बोले वो मर जाएंगे सब तो पुरुष, बचेंगे कौन, घर में रह जाएंगे स्त्रियां और बूढ़े लोग जो लड़ाई में नहीं आए, वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े और स्त्री, वही केवल बच जाएंगे, बूढ़े और बच्चे तो बेचारे नादान है, वो चलो आक्रमण, बूढ़े बच्चे तो बच्चे होते हैं वाला, बच जाएंगे केवल संसार में स्त्रियां और उनको प्रोटेक्शन ना हो तो दूषित हो जाएंगे, और दूषित होने के परिणाम कितने आगे आगे बढ़ गए, बोले नारकीय परिस्थिति हो जाएगा समाज में, है ना, नहीं नारकीय परिस्थिति हो जाएगा केवल यही कारण से वजह से। और आजकल देखिए हम जिसको बढ़ावा दे रहे हैं वो तो प्रथम अध्याय भगवद गीता में शिक्षा दिया गया, उसको हम देखते नहीं है, है ना, तो इसलिए इस बात पर कहा गया अगर गृह परिवार में कोई सुख चाहता है, बहुत आवश्यक है आप पोषणकारी एक आपको कोई संभालने वाले, समझाने वाले, प्रेम देने वाले कोई मां हो और आज्ञाकारी पत्नी हो, आज्ञाकारी पत्नी। अभी तो कोई विवाह भी करते हैं तो पत्नी भी नौकरी करती है पढ़ी लग करके, पति भी नौकरी, तो क्यों वो समझेगा, क्यों मैं तेरे नौकर बनू, मैं भी कमाती हूँ तू भी कमाता है, मैं क्यों कुकिंग करूँ तू क्या ना करो, मैं भी ऑफिस जाती हूँ तू भी ऑफिस जाता है, तू किचन संभालो मैं क्यों संभालू, लो अब कैसे कोऑपरेशन होगा, दोनों नहीं करेंगे कुकिंग, लो मंगा कर खाओ, बाजार से मंगाएगा नहीं तो कैसे करेंगे, होगा नहीं कुकिंग, क्योंकि समता हो गए ना, एक दूसरे के अनुगत होने के नहीं चाहते, बोले मैं क्यों अनुगत बोलते, तू हमारा अनुगत बन, अब कैसे होगा, जो विधि है कि शक्तिमान के अंतर्गत शक्ति होना चाहिए, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य पहले में ये बात लिखे हैं, कि ये साधारण बात है भाई, शक्तिमान शक्ति को धारण करता है, शक्ति शक्तिमान के साथ रह करके उनका काम दिखाएगा, प्रवृत्ति दिखाएगा, और शक्ति बोलेगा मैं अलग रहूंगी, मैं अलग रहूंगी, मैं नौकरी करूं क्या कमी, मैं सिंगल रहकर मैं काम चलूंगी। यही सबसे अवैदिक परंपरा है, हो नहीं सकता। शक्ति शक्तिमान से अलग होना तो उनका स्थिति ही गड़बड़ हो गया, हो कैसे सकता, असंभव। प्रभुपाद जी ने कभी के उपदेश स्थल में कहते थे, मैं तो चाहता हूं हमारे संस्था में जितने पुरुष है शादी करे, भले शादी करे ना करे अलग बात, लेकिन जितने स्त्रियां हैं सबको शादी करना चाहिए कंपलसरी, उनके लिए कंपलसरी शादी करना, क्योंकि बिना आश्रय न वर्तंती कविता वनिता लता। ये तीन चीज है, कविता कवि के बिना, वनिता मतलब स्त्री पुरुष के बिना, लता मतलब बेल कोई सहाय के बिना कैसे खड़े हो सकते हैं, असंभव है। कोई बैल है ऊपर चढ़ेगा कि सपोर्ट चाहिए ना, कविता कवि के बिना कैसे बन सकता, स्त्री ऐसे पुरुष के बिना कैसे हो सकता है। हमारे ये सिद्धांत गलत है, हम अलग होकर सिंगल होना चाहते हैं, ये ठीक नहीं। शक्ति हो, शक्ति के पराकाष्ठा प्रभाव, उसका माधुर्य, उसके प्रादुर्भाव तभी होगा जब शक्तिमान के अंदर रहो, शक्तिमान के साथ रहो। शक्तिमान भी शक्ति के बिना कुछ काम के नहीं है, और शक्ति शक्तिमान के बिना ही बेकार है। दोनों को रहना साथ में आवश्यक है, आवश्यक है। और कैसे रहना है ये प्रणाली है, पति देवता, पति को देवता मान करके, देवता मान करके रहना है, यही है सदाचार। स्त्रियों के लिए केवल एक ही शिक्षा होना चाहिए। मैं तो कभी कभी किसी को बोलता हूं, मेरे पास मैं गृहस्थ बनना चाहता हूं, बनो बीए आइडियल गृहस्थ, मैं बोलता हूं, बोले आइडियल गृहस्थ क्या होता है, बोले आइडियल गृहस्थ का एक ही धर्म होता है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग तो फिलोसफी के बाद बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन सिंपल लिविंग नहीं हो पाता। क्यों, बोले सिंपल लिविंग करते हैं, सिंपल लिविंग करते हैं, सिंपली नहीं लिविंग करते। केवल जीते जरूर जय है, लेकिन तो बोले सिंपल लिविंग क्या है, बोले सिंपल मतलब सिंपल है, नो कॉम्प्लेक्सिटी। परिवार में आज जितने प्रकार के सहायक वस्तु मशीनरी लाते हैं, एक घर छोटा सा लेंगे 10x12 का, और उसके अंदर फर्नीचर लाके भर देंगे, इतने बड़ा पलंग, इतने बच्चे यार टेबुल, ये वो भर दिए लाके, घर झाड़ू भी नहीं लगा सकते, कैसे उसे हटाएंगे फटाएंगे बताओ, भर दिया सर घर में फर्नीचर, गंदा तो रहेगा ही, गंदा रहेगा। कोई कोई तो फर्नीचर के साथ कारपेट लाकर डाल देंगे, कारपेट तो साफ हो ही नहीं सकता, जो गंदा टपका झूठा मोटा उसके ऊपर वही रहेगा। अगर कभी ज्यादा गंदा हो गया तो मतलब पूरे एक मशीन लेकर आएंगे सोख करने वाला, जीव हत्या करेंगे, शुरू शुरू से मारेंगे सारे जीवाणु कीटाणु मारेंगे, जीव हत्या। पहले हमारे वैदिक रीति में था, नारियल की सीख की झाड़ू होता ना, उसमें झाड़ू करो, कोई जीव जंतु मरेंगे नहीं, बच जाएंगे, केवल कचड़ा कूड़े करकट साथ हो जाएगा, जीव जंतु बच जाएंगे, ये निर्दोष सफाई था। लेकिन ये दोष रूप से सीधा खींच कर मार डालो, महिला आगे हवे नहीं आवे, जीवित तो मरेंगे जरूर, गंदगी साफ होना, तो इस प्रकार फर्नीचर से भर देंगे। उसके ऊपर में हर किचन में जाओ तो मशीन ही भरा पड़ा, बर्तन ही काम, मसाला बाटने के लिए नहीं ग्राइंडर है, पीसने के लिए वो मिक्सर है, और क्या के बासी सड़ा खाने के लिए फ्रिज है। अब हर प्रकार से व्यवस्था कर रखे, अब काहे को काम करे, कोई काम नहीं। बाकी जो थोड़ा बहुत साफ सफाई है वो भी एक नौकरा नहीं करे, हम क्या करें, बस बोल दो आकर खट में लेट करके टीवी ऑन करके देखें। अब शरीर नहीं हिलेगा, काम नहीं करेगा, बीमारी तो होगा, तब डॉक्टर मेडिसिन देगा, अब बीमार है मेडिसिन है, बस कैसे सुख हो सकता है बताओ। जो घर में रहे वो ऐसे है, और जो बाहर गए उनका तो और हाल है, क्योंकि शुरू से हमारा तालीम ही खराब, शिक्षा ही खराब है। अगर पहले वैदिक रीति में स्त्रियों की शिक्षा, जब घर में बेटी हुआ तब उनको यहीं तक केवल पढ़ाएंगे लिखाएंगे जब तक वो लिख सके और पढ़ सके लिख सके, थोड़ा बहुत किताब पढ़ सके, बस इतना तक पढ़ना चाहिए, 4-5 क्लास तक, दैट्स एनफ। उसके बाद घर में रामायण महाभारत भागवत पढ़े सुने, और घर के सफाई करना, दूसरे को गेस्ट ट्रीटमेंट करना, कुकिंग करना, अगर एक्सपर्ट कुक हो, एक्सपर्ट साफ सुफ करने वाला हो, दूसरे ट्रीटमेंट करने वाला, तो वो सक्सेस हाउस होल्ड वाइफ है। एक एक बार वो महाराज जी एक बार क्लास दे रहे थे, भक्ति चैतन्य महाराज, वो एक सत्य घटना बता रहे थे क्लास में। बोले एक बार मैंने उनके माताजी की, उनकी किस से होगी माताजी की बात कर रहे थे, बोले वो आई आने के लिए अप्लाई की थी मुझसे, तो उन्होंने इंटरव्यू लिए उसको दिए, बोले अपना सारे लिखो, आईडी प्रूफ, क्या क्या कर रहे हैं सब लिखो, उन्होंने फॉर्म भर कर दी। तो उनको जो प्रोफेशन एक आता है कि आपका प्रोफेशन है नाम गांव हट इज योर प्रोफेशन, तो प्रोफेशन में लिखा कि हाउस वाइफ। तो जो चेक करना था इंटरव्यू, बोला ये क्या है, व्हाट इज योर प्रोफेशन, नाम हाउस, ओके हाउस वाइफ बट व्हाट इज प्रोफेशन, बोला आई एम हाउस वाइफ, ओके दैट्स ओके बट व्हाट इज योर प्रोफेशन। वो रिजेक्ट कर दिया फॉर्म उसका, उनका वीसा सैंक्शन नहीं हुआ, बोला प्रोफेशन नहीं लिख बताते नहीं, आप जाओ पता कर प्रोफेशन ढंग से लिख फॉर्म फिलअप करके। वो तो तंग हो गए, बोले मैं हाउस वाइफ हूं, मैं क्या बताऊं, मैं तो घर की पत्नी हूं, मैं क्या बताऊं मेरा प्रोफेशन है। वो सोच कर दूसरे किसे कंसल्ट कर, नेक्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप कर गया, बोले चाइल्ड केयर एक्सपर्ट समथिंग ऐसा कुछ लिखा, ये प्रोफेशन के ना चाइल्ड केयर एक्सपर्ट, हाउस होल्ड अफेयर हैंडलिंग एक्सपर्ट, ऐसे कुछ लिख कर लिया, लो दैट्स ओके ओके दिस इज प्रोफेशन, ये ठीक। क्योंकि विदेश के सिद्धांत में ये समझ में नहीं आता है, एक स्त्री भी बिना नौकरानी बने, बिना काम के, मतलब ऑफिस ऑफिस में कोई काम ना किए कैसे रह सकती है, कहीं ना कहीं तो एंगेजमेंट कहीं तो काम तो करती होगी ना, इसके बिना एक गृहपत्नी, मतलब गृहपत्नी मतलब क्या होता है, वो समझ ही नहीं आता उनको। और हम ऐसे उन्नत सभ्यता को अपनाते हैं तो क्या बनेंगे फिर हम, है ना, हमारा जो सभ्यता था चिरकाल से, इस सभ्यता को छोड़ करके घर करना काम करना, कैसे कोई मित्र आए बंधु, पहले पहले किसी का बेटी का घर में शादी होने से पहले वो देखते थे, बेटा बेटी स्वयं अपने आप को नहीं देखते थे, उनके अभिभावक माँ बाप उनकी तरफ से माँ बाप जाके देखते थे। मैंने इसे सुना हूं कि जब कोई पुत्र के तरफ से बेटा की तरफ से उनके बड़े बड़े पुरखे जाते थे बेटी के घर में देखने के लिए, जाके टेस्ट लेते थे, जैसे वो बेटी के बाप भी बैठेगा और उनके होने वाले ससुर भी बैठेगा और बैठेंगे सारे एक साथ में खाने के लिए बैठेंगे, और उनको बोलेंगे वही परोसोगी आकर, तो पर देखेंगे पहले किसको देती है परीक्षा, इस प्रकार आचरण के परीक्षा इस प्रकार लिया जाता है, कोई पुराना होगा जानते होंगे पहले किसको देती है ये देखेंगे। तो इस प्रकार व्यवहार की परीक्षा लिया करते थे कि व्यवहार की ट्रेनिंग उसको मिला के नहीं, आजकल तो व्यवहार कुछ है ही नहीं, खुद करते ही नहीं कुछ, आप ले लो खा लो सेल्फ सर्विस, हम क्या करना है, आप ले लो, अब बनाते भी नहीं, बनाने के तो सवाल ही नहीं, बाजार से बगा के देंगे मगा खा लो आप, अब क्या करें, ये सब सभ्यता कहां छिप गया, तो फिर कैसे संसार सुखदायक हो सकता। बोलते गृह परिवार और सुख संसार, सुख तो तभी है, सुख इसी दोनों में निहित है, प्रियवादिनी पतिव्रता पत्नी हो और एक दोनों को संभालने वाले मां, उसके बिना सुख तो असंभव है। और उनको भागवती भाषा में दोनों को साधारण मां या साधारण स्त्री नहीं, मां को कहा गया विष्णु भक्ति, जिनके अंदर भगवान के प्रति भक्ति भाव ना हो सेवा भाव ना हो तो मातृहीन है, मां वास्तविक यही है, विष्णु भक्ति ही माता है। अगर जिसका अंदर ये भक्ति भाव ना हो, भक्ति मतलब सेवा भाव, सर्विस एटीट्यूड, वो सर्विस एटीट्यूड कन्वर्ट होकर के एंजॉयमेंट एटीट्यूड हो गया, ये प्रोपेंसिटी पर सेंस एंजॉयमेंट वही आ गया, वही ट्रांसफर हो गया, वही हालत हो गया है, फिर मां रहा ही नहीं, क्योंकि सर्विस एटीट्यूड है मां है, भक्ति कुछ नहीं है, भक्ति भस धातु से सेवा से बना है, तो मां मतलब सर्विस एटीट्यूड, आजकल सर्विस एटीट्यूड है नहीं किसके पास, केवल भोग प्रवृत्ति ठोस कर भरा है पूरे शरीर में, कोई सेवा करना नहीं चाहते, भोगना चाहते हैं सब हर प्रकार से, तो मतलब मातृहीन हो गए, सर्विस एटीट्यूड से विहीन मतलब मातृविहीन, मां नहीं रहा। और भगवान की सेवा करें, देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम सोच मार्जनम, भगवान ने तपस्या के पहले अंग में कहे यही शारीरिक तप यही है, देवताओं को ब्राह्मणों को गुरुजनों को बड़ों को सेवा करना सम्मान करना और शुचिता मेंटेन करना, इस प्रकार भाव जो है ये सब नहीं रहेगा तो असदाचारी स्त्री है, स्त्रीहीन नहीं है, स्त्री है लेकिन अप्रियवादिनी। अब इस प्रकार स्थिति में कैसे सुख की आशा किया जा सकता है, कैसे आशा, हमेशा डरते रहते हैं घर में, पता नहीं अब मोड में ऑफिस तो गई है, आज आएगी कि क्या आएगी। यहां तक मुझे दिल्ली में था, किसी ने मुझे बता रहे थे दिल्ली में जितने भी स्कूल है कॉलेज है आजकल तो कोई एजुकेशन हो गया, सही बात मुझे बताया गया, बोले स्कूल में टीचर अटेंडेंस, स्कूल में कॉलेज में अटेंडेंस लेते हैं और कोई माताजी स्टूडेंट जो नहीं आया तो तुरंत उनके घर के फोन करके पूछना पड़ता है वो घर में है या कहीं आया कॉलेज, रास्ता तो कहीं और नहीं गया कॉलेज ना कर, ये चिंता रहती, ये आइन दिया गया उनको गवर्नमेंट की तरफ से, अगर किसके एब्सेंट पड़ा तो सबसे पहले पता करना है घर में है कि और कहीं है, ये टीचर का ड्यूटी लगाया गया, मान इस स्थिति पर आ चुका है, इतने इंडिपेंडेंट है। इस प्रकार इंडिपेंडेंस दिया जाएगा तो कैसे हम, जब शक्ति को इतने छूट दे दे, शक्ति अपना मनमर्जी काम करे, शक्ति का तो आधार ही नहीं, तो कहां से कहां गिरेगा आराज तम, कहां कैसे कैसे गिरेगा हम, हाय हाय करेंगे। तो यहां पुरंजन आज इसी प्रकार अपने विवेक को सहायता ना लेकर के, सद्बुद्धि को विचार को साइड आउट करके, अपने रजगुण के प्रभाव से आकर के इस शिकार करना, इस दूसरे को हत्या करना, हिंसा प्रवृत्ति पाप प्रवृत्ति से चला गया था, थोड़े देर क्या थक गया, हम जब कभी पापाचरण करते हैं अनाचार करते हैं ज्यादा समय नहीं कर पाते, थोड़े करते ही इतने क्रांति इतने श्रांति परिश्रम हो जाता, बोलते हो अरे फिर पश्चाताप करते हैं, इसे क्यों कर दिया, नहीं करना था अच्छा था, अब दिमाग ठीक करना आता है, बोलते अरे मेरे पहले के दिमाग बहुत अच्छा था, ये क्या हो गया, क्यों इसे ऐसा किया, और लाकर पूछेंगे अरे क्यों हो गया, और भोगो नहीं और अच्छा नहीं लगता, और अच्छा नहीं, यही श्लोक में झलकता है, पश्चाताप झलकता है और अच्छा नहीं लगता, घर के वही असबाब समन है गृह वस्तु न, पहले जितना मुझे सुहावनी लगता था अब पसंद नहीं, रोचक नहीं लगता, क्योंकि अब पश्चाताप के मूड है, अब रिग्रेटफुल है, अब कैसे अच्छा लगेगा, लग ही नहीं सकता। तो अभी कम से कम जाकर के मना पड़ा, अभी समझ लो हम सभी गलती कर चुके हैं, गलती करने के कारण यहां आकर भोगे हैं, और एक बार चांस देकर के सेकंड बार फिर गलती कर रहे हैं। प्रभुपाद ने बुक लिखे हैं दूसरा अवसर सेकंड चांस, ये पहला अवसर तो खो दिए हमने, ये दूसरे अवसर भी खोने की नौबत पर है, कम से कम अभी भी समझ लो मूर्ख, ये दूसरे अवसर भी खोने ना दो, अभी सद्बुद्धि सद्विवेक के सहायता से विष्णु भक्ति की आश्रम में चले जाओ और वही सर्विस एटीट्यूड को प्राप्त करो, इसी से जीवन कल्याण होगा, इसी से सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार प्रोंजन कथा के माध्यम में नारद जी ने प्राचीन बरहि को इस प्रकार शिक्षा देते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, दो तीन मिनट है, यस, कैसे हाथ उठा, माय गॉड, पहले इस तरफ से, पहले माता जी ओल्ड है, बताइए, सीनियर फर्स्ट, संन्यास क्यों ले लिए, प्रभुपाद जी ने इस बात को उल्लेख किए हैं तात्पर्य में, चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए एक छोटा सा आवश्यक को त्याग कर, हमारे पास कौन सा इतना आवश्यकता पड़ा है, अगर ऐसा शिक्षण ना हो तो नहीं होना चाहिए, लेकिन घर में फिर घर तो घर होना चाहिए ना, घर तो अरण्य जैसा नहीं होना चाहिए ना, अप्रिय वादिनी पत्नी और मातृहीन, तो घर कैसे रह सकते हैं, तो भी भागना पड़ता था। कुछ लोग तो संन्यास इसलिए लेते हैं कि अब घर तो सुहावना नहीं लगता, बोला खत्म हो गया, तो इसी मारे से लेने पड़ते, महाप्रभु तो इसी मारे नहीं थे, महाप्रभु का पूरा जगत कल्याण मिशन था, है ना, नहीं हमारा जगत कल्याण मिशन नहीं होता, हम तो भागने के कारण दुख के मारे भाग करके लेते हैं, परेशान हो गए। यस यस बोलिए, फिर आपका लेते हैं, बोलिए बोलिए जल्दी।
अत्याचार
आप सही कहते हैं, इसमें दोनों ही उत्तरदायी है। अगर नारियों को सही तालीम मूल्य से नहीं दिया जाएगा, प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा तो वो भी ऐसे करेंगे, और पुरुषों को तालीम नहीं दिया जाएगा कैसे व्यवहार करें तो भी ऐसे करेंगे। दोनों ही तालीमहीन है, मैं केवल एक को दोष नहीं देता हूं, है ना।
मुझे प्रश्न ये है कि अभी जो वर्तमान में रज्जु पर डिपेंडेंट शिक्षा को चालू नहीं है और वैसे तो इस काम के अंदर भी दे रहे हैं, कुछ प्रोफेशन तो बिल्कुल अनसुटेबल है लेडीज के लिए, जैसे आर्मी वगैरह की आपने बात की, अभी अगर किसी को करना ही हो तो क्या डॉक्टर्स टीचर्स नर्सेज
देखिए वैदिक परंपरा तो बोलते बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये तो केवल हिस्ट्री शुड बी हाउस वाइफ, है ना, नहीं यही नीति है। किसी प्रकार का उनका एक ही प्रोफेशन है, प्रोफेशनल प्रोफेशन है, पति को घर को बच्चों को संभालना, घर करना, काम करना, ये है प्रोफेशन। उसके अलावा कुछ विचार किए मतलब यू आर ऑल्सो अनट्रेंड, आपके बुद्धि में कुछ भ्रम आ गया है ना। आप बोलिए बोलिए, चलेगा, सुन सकता हूं मैंने। यही तो बता ना, बिल्कुल ये नहीं। मैं तो कभी कभी बोलता हूँ, आजकल जैसे पिता माता का बेटी को शिक्षा देना चाहिए, शादी के समय जाओ पति तेरे देवता है, पति तेरे भगवान, उनके सेवा करते रहना, ये न बता करके विद्यालय में बोलते हैं देखो बेटी सारे जो मुंह मांगा सब दिया, अभी फोन नंबर रखना, कभी कुछ गड़बड़ हो सीधा फोन करना, आ ही जाना, खींच लूंगा केस करके उसको, ये ट्रेनिंग देता है विदाई के समय में, है ना, विदाई समय में ये समझा जाता है, तो कैसे सुख होगा, है ना। नहीं, हरे कृष्ण, बोलिए।